മോക്ഷമാർഗസ്യനീതാരം ഭിത്താരം കർമ്മഭൂവൃതാം ജ്ഞാതാരം വിശ്വതത്വാനാം വന്ദേ തദ്ഗുണലബ്ധയേ. एवं सम्यक दर्शनस्यादौ उद्दिष्टस्य लक्षणोत्पत्तिस्वामी विषय न्यासाधिगमोपाया निर्दिष्टः. सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र का जो प्रथम सूत्र है उसका पहला शब्द सम्यक दर्शन है. तो सबसे पहले सम्यक दर्शन का कथन है और उसका लक्षण क्या है, तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम्, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, उसके स्वामी कौन है, तो जीव है, उसका विषय क्या है, तो जीवा जीव आश्रव वन संवन निर्जरा मोक्षास्तत्व, और उसका न्यास कैसे होता है, उसको प्रस्तुत कैसे किया जाता है, तो नाम स्थापना द्रव्य भावत स्तन्यास. ऐसे उस सम्यक दर्शन को जानने के बहुत सारे उपाय बतलाए. तो तत्संबंधेन च, उसके संबंध की अपेक्षा से ही जीवादीनाम संज्ञा परिणामादि निर्दिष्टम, जीवादिकों की जो संज्ञाएं हैं और उनके जो परिणाम आदिक हैं उनका निर्देश किया गया है. तदनंतरम सम्यक ज्ञानम विचारार्हम इत्याह. तो सम्यक दर्शन का इतना सब विस्तार करने के बाद अब सम्यक ज्ञान की बारी आती है. तो सम्यक ज्ञान का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम्. मति श्रुत अवधि मनः पर्यय और केवल, ये पांच ज्ञान सम्यक ज्ञान है. इंद्रियों से और मन से अपने विषय को जो जानता है वो मति ज्ञान है, और श्रूयते अनेन सुन करके विचार पूर्वक जो जानता है वो श्रुत ज्ञान है. पर वो सभी इंद्रियों के साथ हो सकता है, पर यहां पर सम्यक ज्ञान का प्रकरण होने से श्रुत का अर्थ प्रधानतया आगम होता है. तो आगम ज्ञान की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान का कथन होता है. और वैसे कोई ऐसे भी साधु हो सकते हैं या कोई ऐसा भी मनुष्य हो सकता है जिसके पास आगम ज्ञान नहीं है लेकिन सम्यक दृष्टि है, तो उसका जो भी ज्ञान होगा वो श्रुत ज्ञान सम्यक ज्ञान ही कहलाएगा. मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो भी है उसके पास वो सम्यक ज्ञान. अनयो प्रत्यासन्न निर्देश कृत, मति के बाद तुरंत श्रुत लिखा गया है, बाकी अवधि मन परे इनको न लिख करके मति के बाद श्रुत ज्ञान क्यों लिखा है. तो आचार्य कहते हैं कि ये विशेष बात कही आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, अनयो प्रत्यासन्न निर्देशक कृत कार्य कारण भावात. श्रुत ज्ञान कार्य है, मति ज्ञान उसका कारण है, इसलिए मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान का कथन किया है. तथा च वक्ष्यते, और कहने भी वाले हैं, श्रुतम मति पूर्वम, 20 क्रमांक सूत्र में श्रुतम मति पूर्वम कहने वाले हैं. इसलिए अवाग्धानात अवच्छिन्न विषयाद्वा अवधि, जो नीचे की तरफ जानता है अथवा सीमित जानता है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं. फिर किसी के मन में कोई वस्तु है उसको बिना किसी सहायता के अपने आप जान लेता है, वो मनः पर्याय ज्ञान है. माइंड रीडिंग अलग चीज है, मनः पर्याय ज्ञान अलग चीज है. माइंड रीडिंग जो होता है वो तो अनुमान आदिक से और कुछ लक्षणों से जाना जाता है, किसी के चेहरे को देखकर आंखों को देखकर जान लेते हैं कि उसके मन में क्या है, और ये मनः पर्याय ज्ञान डायरेक्ट जान लेता है उनके मन में क्या है. अभी एक बच्ची का वीडियो आया था ना जिसमें वो किसी के भी मन की बात को बता देती थी। तो ऐसा उसके पास कोई क्षोभ था ज्ञानावरण का, तो बस उससे पूछा कि तुम्हारे माँ के मन में क्या है बताओ, तो तुरंत बता देती थी इसके मन में ये चल रहा है। फिर मेरे मन में क्या है तो बता देती थी ये चल रहा है। तो वो मति और श्रुत ज्ञान की श्रेणी में आता है। पर ये मन परे ज्ञान जो होता है ना, ये अलग श्रेणी का ज्ञान है, ये मुनियों को ही होता है, ये गृहस्थों को या और दूसरे व्रतियों को नहीं होता, केवल मुनियों को होता है। फिर कोई प्रश्न पूछता है कि इसमें और मति ज्ञान में क्या अंतर है, तो आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है, अंतर वही है कि मति ज्ञान को इंद्रिय और मन का सहारा लेना पड़ता है, और मना परे ज्ञान को इंद्रिय और मन के बिना सहयोग के ज्ञान में आ जाता है कि उसके मन में क्या है, वो अंतर है। फिर केवल ज्ञान क्या है, बोलते जिसके लिए उसको प्राप्त करने के इच्छुक जन तपस्या के द्वारा रत्नत्रय का सेवन करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं, वो केवल ज्ञान है। और दूसरा कि केवल का अर्थ होता है जिसको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो केवल ज्ञान है। मना परे ज्ञान में केवल इतना इच्छा तो करनी पड़ती है, मतलब एक प्रकार से जानने के अभिमुख होना पड़ता है कि क्या है उसके मन में, तो बिना इंद्रिय और मन के जानने में आ जाता है। लेकिन केवल ज्ञान में कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ अपने आप उनके ज्ञान में होता है। तदंते प्राप्यते इति अंते क्रियते, केवल ज्ञान अंत में प्राप्त किया जाता है, इसलिए सूत्र में उसको अंत में लिखा है। मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम, अंत में होता है इसलिए उसको अंत में लिखा है। और तस्य प्रत्यासन्नत्वा तत्समीपे मनः परे ग्रहणम, बोले कि उसके निकटवर्ती होने के कारण मनः परे को उसके पहले रखा है। कुतः प्रत्यासत्ति, कैसे निकट है मन परे ज्ञान, कैसे निकट है केवल ज्ञान के? तो आचार्य उत्तर दे, संयमय का अधिकरणत्वात्, दोनों का एक ही आधार है, केवल ज्ञान और मन परे ज्ञान दोनों साधुओं को ही होते हैं, इसलिए निकटता है। तस्य अवधिर विप्रकृष्ट, कुतः विप्रकृष्टत्वात्, प्रत्यक्षात परोक्षात पूर्व मुक्तम सुगमत्वात्, इस तरह ये पांच तरह का जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। प्रमाण नयैर अधिगम इति उक्तम, पहले कह चुके हैं प्रमाण और नयों से ज्ञान होता है। प्रमाणंच केषांचित ज्ञानम अभिमतम, केषांचित सन्निकर्ष, केशांचित इंद्रियमिति, कुछ मत वालों ने प्रमाण ज्ञान को माना है, कुछ मत वालों ने सन्निकर्ष को निकटता को प्रमाण माना है, कुछ ने इंद्रियों को प्रमाण माना है। अतोधिकृता नाम एव मत्यादि नाम प्रमाणत्व ख्यापनार्थमाह, इसलिए आचार्य कहते हैं कि अभी जो पांच ज्ञानों के नाम लिखे हैं बस वो ही प्रमाण है, बाकी सब जो है उनको प्रमाण की श्रेणी में यहाँ जैन शासन में नहीं रखा जाता, वो ही प्रमाण है पांच ज्ञान, तो इसलिए उसको बताने के लिए कहते हैं तत् प्रमाणे। तत् यानी तत् सम्यक ज्ञानम, वह सम्यक ज्ञान प्रमाणे, दो प्रकार के प्रमाणों में बट जाता है, यानी पांच प्रकार के सम्यक ज्ञानों को दो प्रकार के प्रमाणों में विभाजित किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। आद्ये परोक्षम, मति और श्रुत को परोक्ष प्रमाण में रखा जाता है, प्रत्यक्ष मन्यत। और इनसे जो अन्य है, मति और श्रुत से अन्य कौन से है? अवधि, मना पर्याय और केवल। तो ये जो अन्य है तीन, ये प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। लौकिक भाषा में प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ क्या होता है? कि किसी ने आंखों से कुछ देखा किसी को कुछ करते हुए, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं, बोले मैं हूं साक्षी, तो वो लौकिक दृष्टि से। पर यहां पर कह रहे हैं कि ये इंद्रियां भी जो है, इनका इनकी मदद लेनी पड़ी तो परोक्ष हो गया, और जो डायरेक्ट आत्मा से जाने तो प्रत्यक्ष है। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति कह लो, स्मृति कह लो, संज्ञा कह लो, चिंता कह लो, अभिनिबोध कह लो, इति ये इस तरह अनर्थांतरम, कोई अर्थांतर नहीं, कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं है, ये सब एक ही है। मननम मति, मनन करना मति है। स्मरणम स्मृति, स्मरण करना स्मृति है। संज्ञानम संज्ञा, चिंतनम चिंता, अभिनिबोधनम अभिनुबोध। इस प्रकार ये विग्रह होते हैं व्याकरण की अपेक्षा से, लेकिन ये सब मति ज्ञानावरण क्षय उपशम से होते हैं, इसलिए इन सबको अनर्थांतर का अर्थात मति ज्ञान के ही अंदर ये सब आ जाते हैं। तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, वो मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त होता है, यानी इनका निमित्त आवश्यक है उसको। अगर इंद्रिय और मन न हो तो मति ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए इंद्रिय और मन अपेक्षित है। अवग्रही हावाय धारणा हा। मति ज्ञान के ये चार भेद हैं, अवग्रह जब इंद्रिय की सीमा में कोई विषय आता है तो सबसे पहले जो उसको ग्रहण करते हैं इंद्रियों से उसको अवग्रह कहते हैं। जैसे एकदम कुछ गरम गरम लगा, कुछ है, कुछ लग रहा है, ये अवग्रह है। फिर ईहा, वो कुछ जो था उसको विशेष जानने के प्रति जो ज्ञान का झुकाव है, कुछ है इसमें काम नहीं चलेगा, पूरा क्लियर होना जरूरी है क्या है, तो फिर वो ज्ञान जो है मति ज्ञान फिर और जानने के लिए अभिमुख होता है, तो वो ईहा हो जाती है, ईहा मति ज्ञान। फिर उसके बाद अवाय, वो एक प्रक्रिया चलती है ईहा की। फिर जब निर्णय होता है कि वो गरम गरम जो था वो किसी ने पीछे ला करके मोमबत्ती रख दी थी तो उसकी गर्माहट थी वो, और कोई अलग वस्तु नहीं थी, तो ये पक्का हो गया, तो ये अवाय है। और फिर धारणा का अर्थ होता है उसको याद रखना, तो याद रखना भी एक ज्ञान ही है, जो एकदम अंदर बैठ जाती वो बात, वो फिर भुलाई नहीं जाती, वो धारणा है। अब ये जिन पदार्थों के विषय में ये ज्ञान होते हैं चार प्रकार के, उनके भेद बता रहे हैं। 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनको ये चार ज्ञान पकड़ते हैं। बहु बहुविध क्षिप्राणि हिसृतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहु यानी ढेर सारे गेहूं रखे हों तो बहु हो गए, अधिक मात्रा को बहु कहते हैं। फिर बहुविध का अर्थ होता है एक से अधिक प्रकार हो तो उसको बहुविध कहते हैं। विध का अर्थ होता है प्रकार, क्षिप्र का अर्थ होता है शीघ्र, फास्ट, और अनिःसृत का अर्थ होता है जो पूरा निकला नहीं है, बाहर नहीं है, लेकिन तो भी थोड़ा सा होने से थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो उसमें सब समझ लेते हैं। जैसे पानी में आपने कुछ ऐसे हिलता हुआ देखा, अब पूरा नहीं है वो अंदर है बाकी पूरा, पर हिलता हुआ देख करके आपने जान लिया कि ये तो सांप है, अनिश्रित ज्ञान है। फिर अनुक्त, अनुक्त का अर्थ होता है कई कुछ चीजें ऐसी होती है जो बोलकर समझ नहीं होती है, तो बिना बोले ही कुछ चीजें समझ में आ जाती है। जैसे आपने किसी को कुछ काम से भेजा कहीं पर और वो लौट करके आया, उसका मुंह लटका हुआ था तो उसने कुछ बोला भी नहीं, तो आपको समझ में आ गया कि ये काम करके नहीं आया सीधा सही सब, तो वो अनुक्त ज्ञान है। फिर ध्रुव, ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर। तो इन सब का जो ज्ञान होता है ये छह भेद हो गए। और सेतर का अर्थ होता है इनसे इतर सहित। तो इतर कौन से होंगे, बहु का उल्टा एक, एक का ज्ञान, फिर बहुविध का उल्टा एकविध, एक प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान, फिर क्षिप्र का अर्थ फास्ट होता है और अक्षिप्र का अर्थ स्लो हो जाएगा। तो जो स्लो है उसको जानने वाला, अब जिसके क्षिप्र ज्ञानावरण का क्षोभक्षम नहीं है वो स्लो वाले को जानता है, और जिसका है वो इसको जान लेता है। तो अलग अलग तरह का ज्ञान होता है जीवों में। अनिश्रित, फिर निश्रित है, जैसे पानी में हाथी अंदर डुबकी लगा करके बैठ गया और थोड़ी सी सूंड बाहर निकाल करके वो सांस ले रहा है, किसी को पता नहीं है कि पानी में हाथी है, लेकिन एक व्यक्ति सूंड देख करके समझता है कि हाथी है और दूसरा जब वो बाहर निकलता है तब समझता है कि हाथी है। तो बाहर निकले हुए को देखकर समझने वाला निःसृत ज्ञान का धारी है, और अनिश्रित यानी सिर्फ सूंड को देखकर समझने वाला अनिश्रित ज्ञान का धारी है। फिर अनुक्त का उक्त हो जाएगा, जब उसको बतला दोगे तब समझेगा, बिना बोले नहीं समझेगा। जैसे उसका चेहरा लटका हुआ लेकिन फिर भी कोई पूछता है कि क्या हुआ, बोल तो क्या हुआ क्या हुआ, फिर जब वो पूरा बताता है तब समझ में आता है कि ये काम करके नहीं आया है। तो ऐसा भी ज्ञान होता है उक्त। फिर ध्रुव का अध्रुव होता है, कोई वस्तु अध्रुव है अस्थिर है उसको जानने वाला ज्ञान अध्रुव है। तो ऐसे पदार्थ होते हैं पहले, फिर इन पदार्थों को जानने वाला ज्ञान होता है, तो ज्ञान भी उसी प्रकार का कहलाता है। तो इस तरह ये 12 प्रकार के पदार्थ और 4 प्रकार का मति ज्ञान है। अर्थस्य, ये सब किसके भेद हैं, तो बोले अर्थस्य पदार्थ के भेद हैं। पदार्थ ही इतने प्रकार के हो जाते हैं। व्यंजन से अवग्रह, फिर कहते हैं कि जो व्यंजन है, व्यंजन का अर्थ होता है ये भोजन खाने पीने वाले व्यंजन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर जानने योग्य वस्तुओं की बात चल रही है। व्यंजन का अर्थ यहाँ पर है जो अप्रकट है, जो अस्पष्ट है, ऐसी कोई ज्ञेय वस्तु, ज्ञेय भूत वस्तु, जो जानने योग्य वस्तु तो है लेकिन अव्यक्त है, अप्रकट है, अस्पष्ट है, तो उसके ये चारों ज्ञान नहीं हो सकते, अवग्रह ईहा अवाय और धारणा नहीं हो सकते। जो स्पष्ट है उनके ही ये चारों होंगे, और जो अस्पष्ट है उनके केवल अवग्रह होगा। अवग्रह का अर्थ कुछ है बस, इतना ज्ञान होगा। अब क्या है और निर्णय करने वाली बात और याद रखने वाली बात वहां पर नहीं हो सकती। जैसे कई बार ऐसा होता है अपने जीवन में कि कोई चीज होती है अपन समझ नहीं पाते ठीक से क्या है, तो फिर वो याद भी नहीं रहती, क्योंकि अगर अवग्रह के बाद ईहा हो और अवाय हो और धारणा हो तब वो चीज याद रह सकती है, यहां तो केवल अवग्रह हो रहा है तो वो साफ हो जाती है वहीं पर। ऐसा है न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, लेकिन ये जो अवग्रह होता है, व्यंजन अवग्रह, अस्पष्ट वस्तु का जो अवग्रह होता है, ये केवल 4 इंद्रियों से होता है, स्पर्शन रसन घ्राण और श्रोत्र, चक्षु से नहीं होता और अनिंद्रिय यानी मन से भी नहीं होता। मन और आंख स्पष्ट वस्तु को ही देख सकते हैं, अस्पष्ट को नहीं जान सकते। श्रुतम मतिपूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम, अब ये इतने सारे भेद बताए मति ज्ञान के, तो कुल मिलाने पर 336 भेद हो जाते हैं। 336 अवग्रह ईहा अवाय और धारणा, इनको पांच इंद्रियों से गुणित कर दो और एक मन से गुणित कर दो, कितने हुए? छह को चार से गुणा कर दिया, छह को चार को छह से गुणा कर दिया, चौबीस हो गया। फिर अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह, व्यंजन यानी अस्पष्ट और अर्थ यानी स्पष्ट, इनका जो अवग्रह होता है तो अर्थावग्रह वाली जो स्थिति होती है उसमें ईहा अवाय धारणा सब होते हैं। तो 12 के साथ गुणा करना होगा इनको, क्योंकि 12 प्रकार के वो भेद बताए ना, बहु बहुविध क्षिप्राण श्रितानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, ये 12 भेद बताए, तो इन 12 वस्तुओं का ज्ञान होगा तो उनको गुणा कर दो। 24 को 12 से गुणा करने से कितने हुए? 280 हो गया, 288 हुए। अब इसके बाद जो व्यंजन अवग्रह है वो इन 12 पदार्थों का होगा लेकिन अस्पष्ट अवस्था में होगा और चार इंद्रियों से होगा, तो इन 12 का 4 से गुणा कर दिया तो 48 हुए। तो 288 में 48 को जोड़ दो, तीन सौ छत्तीस, ये मति ज्ञान के भेद होते हैं। एक बार फिर अवग्रह यह अवाय धारणा, पांच इंद्रियां और एक मन छह, तो अवग्रह यह अवाय धारणा को 6 से गुणा कर दिया तो कितने हुए? 24। और 24 को वो जो 12 भेद थे वस्तु के उससे गुणा कर दिया तो 288 हो गए, 288। फिर व्यंजन अवग्रह के जो भेद हैं उसमें 12 पदार्थों को ले लो और चार इंद्रियों को ले लो, न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, चक्षुर और मन को नहीं लेना है, तो ऐसे हिसाब लगाएंगे तो फिर वो 48 हो जाते हैं। 4 को 12 से गुणा करते हैं तो 48 होते हैं, और 48 को इसमें जोड़ देते हैं 288 में, तो 336 प्रकार का मति ज्ञान होता है। फिर ये 20 क्रमांक का जो सूत्र है वो श्रुतज्ञान का विवरण करता है। श्रुतज्ञान दो प्रकार का होता है, एक ज्ञानात्मक होता है, दूसरा शब्दात्मक होता है। तो ज्ञानात्मक जो श्रुतज्ञान है वो स्वार्थ प्रमाण कहलाता है, अपने लिए काम में आने वाला है, जो ज्ञान है वो अपने लिए काम में आने वाला है, और जो वचन है वो दूसरे के लिए काम आएंगे। वो वचन भले ज्ञान से संबंध रखते हो लेकिन ज्ञान अपने आप में दूसरे के काम में नहीं आ सकता, ज्ञान कभी तभी काम में आता है जब साथ में वचन हो। तो जो वचनात्मक श्रुत ज्ञान है उसको परार्थ प्रमाण कहते हैं, और जो ज्ञानात्मक श्रुत ज्ञान है वो स्वार्थ प्रमाण है, और बाकी चारों ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, बाकी मति ज्ञान अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये स्वार्थ प्रमाण है। अपनी आत्मा तक वो सारी जानकारियां पहुंचाने का काम करते हैं चारों ज्ञान। श्रुत ज्ञान क्या करता है कि जानकारी भी पहुंचाता है, और शब्दात्मक जो श्रुत है वो दूसरों को भी प्रतिपादन करता है, दूसरों के लिए भी प्रतिपादित करता है। तो वो परार्थ प्रमाण और स्वार्थ प्रमाण दो प्रकार का होता है, इसलिए श्रुत ज्ञान का विशेष महत्व है, श्रुत ज्ञान का विशेष उपकार है। तो श्रुतम मति पूर्वम, आचार्य कहते हैं कि ये श्रुत मति ज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। मति पूर्वम, पूर्व शब्द का अर्थ यहां पर पहले नहीं लेना है, भले ही मति ज्ञान पहले हो लेकिन पूर्व का अर्थ यहां पर कारण लेना है। श्रुतस्य प्रमाणत्वं पूरयति, पूर्वम निमित्तम कारणम इत्यनर्थांतरम। एकदम स्पष्ट रूप से आचार्य लिख रहे हैं कि पूर्व कह लो, निमित्त कह लो, कारण कह लो, इसमें कोई अंतर नहीं है, तीनों एक ही चीजें हैं। पूर्व का अर्थ निमित्त है, पूर्व का अर्थ कारण है। तो मति ज्ञान के कारण श्रुत ज्ञान होता है। अगर मति ज्ञान नहीं हुआ किसी चीज का तो फिर उस चीज का श्रुत ज्ञान भी नहीं हो सकता, ऐसा है। अब उसके दो भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। जो 12 अंग होते हैं शास्त्र जिनवाणी के आगम के, वो अंग प्रविष्ट है, और जो 14 प्रकीर्णक आदिक होते हैं, 14 जो दश वैकालिक, उत्तराध्ययन, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, स्तुति आदि जो 14 भेद हैं उसके, वो अंग बाह्य है। और अंग प्रविष्ट की रचना गणधर करते हैं, अंग बाह्य की रचना आरातीय आचार्य करते हैं। आरातीय आचार्य जो हैं वो गणधरों के बाद वाले आचार्य हैं, लेकिन उनको अंग और पूर्वों का ज्ञान है, और अंग और पूर्वों का ज्ञान होने के साथ साथ उनके अंदर ऐसी कुशलता है कि वो जो अल्प बुद्धि वाले, अल्प आयु वाले, अल्प शक्ति वाले जीव हैं, उनके लिए 12 अंगों में से जो सार है उसको श्रुत के रूप में, शास्त्र के रूप में निबद्ध कर देते हैं, तो उसको अंग बाह्य कहते हैं। अंग बाह्य के 14 भेद कौन से हैं तो हम आपको आचार्य पूज्यपाद स्वामी के वचनों से ही, सर्वार्थ सिद्धि में तो अंग प्रविष्ट का विस्तार से वर्णन है, श्रुत भक्ति में अंग बाह्य का वर्णन है, उनके नाम हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। सामायिक ये अंग बाह्य है, चतुर्विंशति स्तव दूसरा अंग बाह्य, तीसरा वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा वैनयिक, छठा कृतिकर्म, फिर पृथु दश वैकालिक, विस्तृत जो दश वैकालिक है वो सातवा, फिर आठवा वरम उत्तराध्ययन, उत्तम उत्तराध्ययन, फिर कल्प व्यवहार, फिर कल्पाकल्प, फिर महाकल्प, फिर पुंडरीक, फिर महापुंडरीक। फिर प्रकीर्णक, ये सारे अंग बाह्य हैं, इसके 14 भेद पूरे बनते हैं। तो वहां सर्वार्थ सिद्धि में अथवा तत्वार्थ सूत्र में आचार्य महाराज कहते हैं कि दो भेद होते हैं श्रुत ज्ञान के, अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट। फिर अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री धर्म कथा, उपासक अध्ययन, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरण, फिर विपाक सूत्र। और अंतिम है दृष्टिवाद। इस तरह ये 12 अंग होते हैं। ये 12 अंग आपने श्रुतस्कंद यंत्र में देखे होंगे। श्रुतस्कंद यंत्र देखा है आपने कभी? नहीं तो फिर अभी यहां से वो सामने स्टैंड में ये इनको दिखा सकते हैं नीचे। ये कन्नड़ में भी आता है और देवनागरी लिपि में भी आता है। ये है भट्टारक जी ने दिया हमें मंदिर जी में, और पाषाणों में भी है, ऐसे पत्थरों में भी बना हुआ है ये श्रुतस्कंद यंत्र। तो इसको अंग प्रविष्ट कहते हैं। तदेतत् श्रुतम द्विभेदम अनेक भेदम द्वादश भेदमिति। यह जो श्रुत है वो दो भेद वाला है, अनेक भेद वाला है, 12 भेद वाला है। किं कृतोयम विशेष, किन्ने ये भेद कर डाले? कोई शंकाकार पूछता है कि ये भेद किसने किन्ने किए? तो आचार्य कहते हैं वक्त्र विशेष कृत, वक्ताओं ने ही किए हैं। जिन्होंने जो श्रुत के वक्ता थे उन्हीं ने किए, आगम के जो वक्ता थे उन्हीं ने ये भेद किए। वक्ता कौन है आगम के? तो आचार्य कहते हैं त्रयो वक्तारः, तीन वक्ता है। जैन आगम के तीन वक्ता है, कौन से? आचार्य, उपाध्याय, साधु। तो अपन अपना दिमाग न लगाकर यहीं से आचार्य महाराज क्या बतला रहे हैं वो पढ़ लेते हैं कि त्रयो वक्तारः, तीन वक्ता है। पहले सर्वज्ञ तीर्थकर, तीर्थंकर भगवान, और वो कौन से तीर्थंकर? जो सर्वज्ञ बन चुके हैं वैसे तीर्थंकर, यानी जिनको केवल ज्ञान हो गया है वो वाले तीर्थंकर। फिर दूसरे इतरोवा, बोलते कि दूसरे भी कोई भी अन्य केवली भी अगर होंगे तो वो भी प्रथम श्रेणी के वक्ता है, क्योंकि केवली है वो। तो चाहे तीर्थंकर हो या अन्य केवली हो वो प्रथम वक्ता है। दूसरे श्रुत केवली, श्रुत केवली का अर्थ क्या होता है? ये जिनको 12 अंगों का पूरा ज्ञान हो गया है वो श्रुत केवली है, उनको चतुर्दश पूर्वधारी भी कहते हैं, तो वो दूसरे वक्ता है। और तीसरे वक्ता कौन है? आरातीय चेति, जो आरातीय है। आरातीय का अर्थ होता है कि जो उनके बाद वाले हैं, यानी है तो वो उतने ही ज्ञानी लेकिन उन्होंने अल्प बुद्धि वाले जीवों के लिए, अल्प शक्ति वाले जीवों के लिए, अल्प आयु वाले जीवों के लिए ये 12 अंगों में से कुछ सार की बातें ये 14 भागों में उपनिबद्ध की है। तो वो गणधरों के शिष्य प्रशिष्य के ही अंदर आते हैं और बड़े महान ज्ञानवान होते हैं। देखो जिसके पास 12 अंग का ज्ञान नहीं होगा तो वो उनका सार कैसे निकालेगा? समझ रहे बात को आप? सार कौन निकाल सकता है? जिसके पास पूरा ज्ञान हो वही तो सार निकालेगा ना। तो फिर इसमें यही बताया कि तस्य साक्षात शिष्यैर बुद्ध्यतिशय अर्धयुक्तैर गणधरैः श्रुत केवलिभिर अनुस्मृत ग्रंथ रचनम अंग पूर्व लक्षणम तत्प्रमाणम। बोलते हैं कि केवली भगवान ने तो जो बोला वो बोला, अर्थ था आगम उद्दिष्ट, उन्होंने तो सब अर्थ बता दिया पूरा, एक प्रकार से पूरा आगम उनकी दिव्य ध्वनि में आ गया था। लेकिन फिर गणधरों ने क्या किया कि अपनी बुद्धि के अतिशय से उनको 12 अंगों में व्यवस्थित कर दिया। जो कुछ भगवान ने कहा था उनको 12 अंगों में व्यवस्थित किया। फिर आरातीय ही पुनराचार्य ही, फिर जो आरातीय थे आगे के आचार्य थे वे काल दोषास संक्षिप्तायुर काल दोषात संक्षिप्तायुर मति बल शिष्यानुग्रहार्थम दश वैकालिकाद्युपनिबद्धम। उन्होंने फिर और रचनाएं की उनका उसमें से सार निकाल करके, तो उनको ज्ञान था उन सभी का, और वो अंग बाह्य की जो रचयिता होते हैं वो आचार्य आरातीय आचार्य कहलाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि ये सारी बातें इनमें से किसको अपन सही मानेंगे, जो तीर्थंकर ने कहा था उसको सही मानेंगे, या जो गणधर ने 12 अंग बनाए उसको सही मानेंगे, या जो आराती आचार्यों ने जो सार बताया उसको सही मानेंगे? किसको सही मानेंगे? अंग बाह्य को सही मानेंगे, अंग प्रविष्ट को सही मानेंगे, या दिव्य ध्वनि को सही मानेंगे? तो इसका समाधान यह है कि तत्प्रमाणम तत्प्रामाण्यात। केवली भगवान के वचन प्रामाणिक क्यों है? तो बोले प्रत्यक्ष दर्शित्वात् प्रक्षीण दोषात् दोषत्वाच्च, कि वो एक तो प्रत्यक्ष दर्शी हैं, तो प्रत्यक्ष दर्शी होने के कारण किसी चीज को वो न जानते हो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना? सब कुछ जानते हैं, तो अज्ञान जनित कोई भी दोष उनके वचनों में संभव नहीं है। जो सब कुछ जानते हैं उनके वचनों में कोई ऐसी चीज कैसे आ सकती है जिसको वो न जानते हो? न जानने का है ही नहीं विषय, सब कुछ जानते हो। और दूसरा कारण बताया प्रक्षीण दोषत्वाच्च, राग द्वेष मोह इन तीनों को दोष कहते हैं, अथवा 18 दोषों को भी दोष कहते हैं। तो जिनके पास राग द्वेष मोह नहीं है तो उनके वचनों में असत्यता का सद्भाव संभव नहीं है, क्योंकि राग द्वेष मोह के बिना असत्य कौन बोल सकता है? कोई बोल सकता है क्या? तो अज्ञान भी नहीं है और रागादिक भी नहीं है, तो सर्वज्ञ और वीतराग होने के कारण उनके वचन सच्चे हैं। पहली बात हो गई कि दिव्य ध्वनि सच्ची क्यों है, क्योंकि वो जहां से आई है वो सर्वज्ञ भी है और वीतराग भी है। फिर गणधरों के वचन सच्चे क्यों हैं? तो आचार्य उत्तर देते हैं तत्प्रमाणम तत्प्रामाण्यात्। बोले क्योंकि गणधर सच्चे हैं इसलिए उनके वचन सच्चे हैं। जो कुछ भगवान ने कहा है उन्होंने कुछ भी अपनी तरफ से अलग से कुछ भी कलाकारी नहीं की है, आज की भाषा में कहते हैं कि उनने अपनी तरफ से कोई काड़ी नहीं की उसमें, यथावत उन्होंने वर्णन किया है 12 अंगों में, इसलिए उनके वचन भी सच्चे हैं। फिर आराती आचार्यों ने जो अंग बाह्य की रचना की वो सच्ची है या नहीं है? तो आचार्य कहते तत्प्रमाणम वो भी सच्ची है। क्यों? क्योंकि अर्थतस तदेव एदमिति, पूरा अर्थ जो था वो वहीं से निकाला हुआ था, तो जहां से वो निकाला वो सच्चा था, तो जो निकाला वो झूठा कैसे होगा, है ना? फिर उदाहरण दिया आचार्य महाराज ने, क्षीरार्णव जलम घट गृहीतमेव, क्षीर समुद्र का जल घड़े में भर करके भगवान का अभिषेक करते हैं देवलोग सुमेरु पर्वत पर, तो क्षीर समुद्र के जल में और घड़े के जल में कोई अंतर है? मात्रा में अंतर है, जल में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार ये जो जिनवाणी है आज यहां अपने पास आई है, मात्रा बहुत कम है लेकिन चीज वही है जो समवसरण में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि के अंदर प्रकट हुई थी। और फिर अपन इस पर थोड़ा और विचार करते हैं। ये श्रुति ज्ञान का विषय हमेशा थोड़ा विस्तृत रहता है। 12 अंगों का क्या विषय है इसके ऊपर तो अपनी चर्चा नहीं हुई। 14 पूर्व भी इसी में आते हैं, 12वें अंग में। 12 अंगों के नाम अपन ने पढ़े, फिर जो 14 पूर्व होते हैं उसमें सबसे पहला उत्पाद पूर्व है, दूसरा अग्रायणीय अथवा आग्रायणीय, ऐसे दोनों पाठ मिलते हैं, तीसरा वीर्यानुप्रवाद, चौथा अस्ति नास्ति प्रवाद, फिर ज्ञान प्रवाद, फिर सत्य प्रवाद, फिर आत्म प्रवाद, फिर कर्म प्रवाद, फिर प्रत्याख्यान पूर्व, 9वां पूर्व है, फिर विद्यानुप्रवाद 10वां है, फिर कल्याण नामधेय, इसमें कल्याणकों का वर्णन होता है, 63 शलाका पुरुषों के, फिर प्राणावाय में आयुर्वेद का वर्णन होता है, फिर क्रिया विशाल, फिर अंतिम जो 14वां पूर्व है लोक बिंदु सार है। तो ये सारे भेद जो हैं इसमें आते हैं श्रुति ज्ञान में। तब फिर वही प्रश्न सामने था, देव शास्त्र गुरु या देव गुरु शास्त्र, तो उसका समाधान यद्यपि वहां पर दिया गया था पर काल की अपेक्षा से अपन विचार करते हैं तो जो लिखित शास्त्र हैं वो लिखित शास्त्र कब आए, तो अभी जिनको जो जानकारी आज समुपलब्ध है अच्छी तरह सबको पता है, तो सबको पता है कि ये शास्त्र आचार्यों ने लिखे थे ताड़पत्री पर, इतना तो सबको मालूम ही है। उसके पहले शास्त्र नहीं थे, उसके पहले अरहंत थे और गुरु थे, और गुरु जो शिष्य को समझा देते थे वो गुरु वचन जो थे उनके लिए उपकरण होते थे, शास्त्र कुछ नहीं थे वहां पर। तो ये एक 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 दृष्टिकोण है, ये एक जानकारी है, लेकिन क्या अपन उसी को शास्त्र मानेंगे जो लिपिबद्ध है, जो वचनात्मक श्रुत है, क्या वो श्रुत या आगम नहीं है? निश्चित रूप से वो भी आगम है, और वो आगम सबसे पहले तो भगवान के मुख से प्रकट हुआ, फिर गणधरों को प्राप्त हुआ, गणधरों ने उसके 12 अंग बनाए हैं। 12 अंग गणधरों ने जो बनाया है वो गणधरों के बाद की कृति नहीं है, वो गणधरों के पहले ही अरहंत से आई हुई वस्तु है जिसको गणधरों ने वर्गीकृत किया है 12 भागों में। गणधरों ने कोई अपनी नवीन रचना नहीं की है। जैसे मान लो हम कोई कविता लिख रहे हैं और उसमें पूरे शास्त्र का कुछ विषय हम मिला देते हैं अपन, तो हम क्या कहलाएंगे, उस विषय के स्वामी कहलाएंगे या फिर अनुवादक कहलाएंगे? अनुवादक कहलाएंगे ना। तो अनुवादक क्या कर्ता होता है, रचयिता होता है? नहीं, वो केवल काव्य में उसको रूपांतरित करता है, तो वो उसका स्वामी नहीं हो सकता। तो गणधरों ने भगवान के जो वचन थे उनको 12 अंगों में विभाजित किया, और फिर जो आराती आचार्य थे उन्होंने 12 अंगों का सार अंग बाह्य में डाला। तो कोई, और फिर जो पंचम काल के आचार्य थे जिन्होंने शास्त्र रचना की, पुष्पदंत, भूतबली आचार्य, गुणधर आचार्य, यतिवृषभ आचार्य आदि, सामंतभद्र आचार्य, पूज्यपाद स्वामी आदि, बहुत सारे आचार्य हुए, तो उन्होंने लेखन कार्य किया है, और लेखन कार्य ज्ञान के आधार पर किया है। वो ज्ञान उनको पूर्वाचार्यों से प्राप्त हुआ था, पूर्वाचार्यों को श्रुत केवलियों से प्राप्त हुआ था, श्रुत केवलियों को केवलियों से प्राप्त हुआ था, और वचनात्मक जितना भी श्रुत था वो भी वहीं से आ रहा था। दिव्य ध्वनि क्या है, कौन सी इंद्रिय का विषय है दिव्य ध्वनि, किस इंद्रिय के द्वारा दिव्य ध्वनि पकड़ में आती है? आंखों से आती है क्या दिव्य ध्वनि पकड़ में? नाक से पकड़ में आती है क्या दिव्य ध्वनि? ऐसे सूंघ लो, जीभ से आती पकड़ में, त्वचा से आती कि ऐसे ऐसे नहीं आती, कर्ण से आती है। इसलिए उसको सुनने के बाद फिर गणधरों ने उसको 12 अंगों में लिपिबद्ध किया, बल्कि ये कहो कि ग्रंथ रूप कर दिया। पहले अर्थ रूप था, फिर ग्रंथ रूप हो गया वही श्रुत। तो इस विषय में अपन ने उस दिन पर्याप्त वहां पर वर्णन किया था, और भट्टारक जी ने कन्नड़ में आपको और सरलता से उसको स्पष्ट कर दिया था। और इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं ऐसी, जैसे वीरसेन आचार्य महाराज ने धवल ग्रंथ के मंगलाचरण में जो दूसरी गाथा लिखी है, पहली गाथा में तो जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया, दूसरी गाथा में जिनवाणी को नमस्कार किया, सरस्वती को, आचार्यों को नहीं किया। क्यों नहीं किया? जिनवाणी का स्थान आचार्यों से अगर नीचा होता तो पहले किसको नमस्कार किया जाता? आचार्यों को, बाद में जिनवाणी को नमस्कार करते, लेकिन जिनवाणी का स्थान ऊंचा था तो उन्होंने उनको नमस्कार किया। और देखो अभी हम एक और बात बताते हैं, चंद्रप्र भगवान को नमस्कार किया सबसे पहले जय धवला में, फिर तीसरे नंबर पर 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया। देखना ध्यान से देखना क्रम को, ये वीरसेन आचार्य कोई मामूली आचार्य नहीं है। फिर तीसरे नंबर पर सो जय जस केवल नाणुज्जल दप्पणम लोय लोयम लोया लोयम। फिर अंत में महावीर स्वामी को नमस्कार किया, और चौथे नंबर पर जिनवाणी को नमस्कार किया, और पांचवें नंबर पर नमः गुण रैण भरियम सुअर्णान सुअर्णानामीय जलोह गहिरम अपारम गणघर देव महोवही मणेय नया भंग भंगी तुंग तरंगम। गणधर देव रूपी समुद्र को नमस्कार किया। आप देखो कितनी गंभीर बात है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने कसाय पावड़ के मंगलाचरण में पहले चंद्रप्र भगवान को नमस्कार किया, फिर 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया, फिर महावीर भगवान को नमस्कार किया, फिर सरस्वती माता को नमस्कार किया, माता शब्द लिखा है, और उसके बाद पांचवी गाथा में गणधर देवों को नमस्कार किया। तो क्या हुआ, देव शास्त्र गुरु या देव गुरु शास्त्र? सोचने की बात है, इसमें आग्रह का कोई प्रश्न ही नहीं है। और उसके बाद इस ग्रंथ के जो रचनाकार है उनको छठी गाथा में नमस्कार कर रहे हैं। गणधरों के बाद फिर जिन्होंने गुणधर आचार्य महाराज ने इसकी रचना की है उनको नमस्कार कर रहे हैं। फिर उसके बाद में सनाग हस्ती वरम देव, फिर नाग हस्ते आर्य मक्षु, ऐसे दो आचार्य और हुए हैं, उनको नमस्कार किया। और उसके बाद यति वृषभ आचार्य को नमस्कार किया, ऐसे 8 मंगलाचरण किए उन्होंने। तो अंतिम क्रमांक किसका आया? गुरु का आया ना, देव, शास्त्र, फिर गुरु। तो इतना सुस्पष्ट क्रम है, इतना ही पर्याप्त है। इसको देखने के बाद अंदर कोई प्रश्न रह ही नहीं सकता, कोई तर्क रह ही नहीं सकता। और जितने भी तर्क हैं वो सब धुल जाते हैं। क्यों धुल जाते हैं? क्योंकि आगम साबुन है। साबुन लग गया तो फिर जो भी विपरीत धारणा थी या फिर जो भी भिन्न धारणा थी वो साफ हो ही जाती है। तो 8 मंगलाचरणों में, कसाय पावड़ में, देव शास्त्र गुरु का क्रम ही स्थापित हो रहा है। ये बात हमने वहां नहीं बताई थी, ये बात आज यहां आपके सामने रख रहे हैं। इसी तरह ये तो जय धवला की पहली पुस्तक थी, अब धवला की पहली पुस्तक देख लीजिए, वहां पर भी अपने को और बात मिल जाएगी, पुष्ट हो जाएगी। ये है सिद्ध मणंत मणिंदिय मणोम पथ सौख मण वज्जम केवल पहोह निज्य दुर्णय तिमिरम जिनम नमः। हे भव्य जीवो, आप सब मिल करके जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करो। ये मंगलाचरण पहला। तो जिनेन्द्र भगवान क्या हुए? देव है ना। कैसे हैं जिनेन्द्र भगवान? सिद्ध, ये समझ लो कि सिद्ध ही हो गए हैं, क्योंकि जिन होने के बाद सिद्ध होने में कोई देर नहीं लगती, उसी भाव से सिद्ध होते हैं। फिर अनंतम, अनंत है। अब वो उनका जिनत्व कभी नष्ट नहीं होने वाला है, उनके जो क्षायिक लब्धियां हैं वो कभी मिटेगी नहीं। और अणिंदियम, अतीन्द्रिय है वो। अणुवम, अनुपम है। अपथ सौखम, और आत्म से उत्पन्न होने वाले सुख के स्वामी है। और अणवज्जम, निष्पाप है। और केवल पहोहणि जिय दुर्णय तिमिरम, केवल ज्ञान की प्रभा के समूह से जिन्होंने मिथ्यात्व के अंधकार को जीत लिया है, यानी जगत के मिथ्यात्व को दूर करने वाले जिनेन्द्र भगवान को ही भव्य जनों नमस्कार करो। तो ये सबसे पहले देव आ गए। अब देखिए इसके बाद वाली गाथा, जो दूसरी गाथा है, उसमें क्या कह रहे हैं? बारह अंग गिज्झा वियलिय मल मूढ़ दंसणु तिलया विभिवर चरण भूसा पसियउ सुय देवया सुईरम। क्या सुंदर बात है। अब ये बात, ये भी एक जानकारी की बात है, लेकिन अभी आज वर्तमान युग में बहुत कम लोग इस जानकारी से परिचित हैं। 12 अंगों से ग्राह्य है शरीर जिसका, यानी जो सरस्वती देवी की जो मूर्ति है उसका वर्णन है। वो जो मूर्ति है देवी के आकार में है, तो वो जो शरीर है देवी का वो क्या है? सरस्वती देवी का शरीर क्या वस्तु है? तो आचार्य कहते हैं कि जो द्वादशांग है वही शरीर है सरस्वती माता का। तो आप ये मत समझना कि वो देवगति की कोई देवी है। 12 अंग रूपी शरीर के आकार में वो सरस्वती देवी है। और कैसी है? तो बोलते हैं कि बियलिय मल मूड दंसण तिलया, माथे पर जो तिलक लगा हुआ है सरस्वती के, वो अतिचार और मूढ़ताओं से रहित सम्यक दर्शन का तिलक है सरस्वती माता के मस्तक पर, ललाट पर। और कैसी है सरस्वती माता? तो बोले विविह वर चरण भूसा, 13 प्रकार का जो चारित्र होता है ना, अथवा चारित्र के जितने भी भेद हैं, सामायिक छेदोपस्थापना आदि ले लो, फिर 13 चारित्र में 5 महाव्रत, 3 गुप्ती और 5 समिति ले लो, या फिर और और भी जितने भेद हो सकते हैं चारित्र के, देश चारित्र, सकल चारित्र, ऐसे भी भेद होते हैं ना, इन सबको ले लो, यही उनकी भूषा अर्थात उनके आभूषण है। सरस्वती माता के जितने आभूषण है ना, वो आभूषण सोने चांदी के भले दिखते हों, लेकिन वास्तव में वो रत्न स्वर्ण रजत ये चारित्र रूपी आभूषण है। तो ऐसी सुय देवया सरस्वती देवी सुयरम पसियऊ, वीरसेन आचार्य कह रहे हैं कि हमेशा प्रसन्न रहें, हमारे ऊपर हमेशा कृपालु रहें। तो देखिए जिनेंद्र देव के बाद सीधे सरस्वती माता आई है ना, और उसके बाद फिर तीसरे स्थान पर कह रहे हैं सैलगण पौम रविणु विविहित दिविराया निसंगा नीराया विकुराया गणहर देवा पसी यंतु। क्या सुंदर गाथा है। 12 गण होते हैं समवसरण में, तो 12 गण जो होते हैं उसमें भव्य रूपी कमल, भव्य जीव रूपी कमल होते हैं, पूरे तीर्थंकर को घेर करके बैठते हैं सब 12 समूह। तो भव्य जीव रूपी जो समूह होता है वो कमल के समान होता है, और उन कमलों के लिए जो रवि अर्थात सूर्य के समान है वो कौन है? गणधर। अभी गणधर की बात कर रहे हैं। वो विविहिद्धि विराया विविध प्रकार की रिद्धियों से शोभित होते हैं गणधर, और कैसे होते हैं? निसंगा परिग्रह रहित होते हैं, और कैसे होते हैं? नीराया भी कुराया, अब ये विरोधाभास अलंकार है, नीराग होकर भी कुराग होते हैं। नीराग का अर्थ होता है राग रहित, और कुराग का अर्थ बुरे राग वाले। नीराया भी कुराया, पर ये तो बहुत तकलीफ वाली बात है, ऐसा सुन करके बड़ा अटपटा लगता है कि गणधर देव वीतराग होकर के भी खोटा राग रखने वाले होते हैं, पर ये एक बार आप पढ़ते हो तो ऐसा लगता है। इसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं, ये विरोध नहीं है, विरोध का आभास दे रहा है। तो वास्तविकता क्या है? तो कुराया का अर्थ यहां पर कुराग न लेकर के कुराज लेना है, पर प्राकृत में यह बन गया है, वो चाहे ज हो या फिर ग हो, दोनों का यह बन जाता है नीराया वे कुराया, नीराया में नीराग और कुराया में कुराजा। कु का अर्थ होता है पृथ्वी, और संपूर्ण पृथ्वी के राजा होते हैं गणधर, यह अर्थ है उसका। तो विरोध का परिहार हो गया, खोटा राग करने वाले नहीं होते। वीतराग है तो राग है ही नहीं, अच्छा या बुरा कोई भी राग नहीं हो सकता, तो फिर कुराग न लगा करके कु राजा, कु यानी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी के राजा होते हैं। ऐसे गणधर देवा पसीयंतु, हम पर प्रसन्न हो। तो अब देखिए देव शास्त्र गुरु हुए कि नहीं फिर से, है ना? फिर पुष्पदंत भूतबलि आचार्य को नमस्कार किए हैं, और फिर ग्रंथ आगे गतिमान किया है धवला। तो इस तरह जय धवला और धवला दोनों के मंगलाचरणों से भी ये बात सिद्ध होता है, होती है कि आगम का स्थान गुरु से ऊपर है। अगर आगम न हो तो गुरु भी न हो, क्योंकि बिना आंख के जो गुरु होंगे, आगम चक्षु साहू, गुरु की आंख आगम है, और अगर आगम गुरु के बाद हो तो इसका अर्थ जो पहले हैं वो अंधे हैं, उनके पास आंख नहीं है, है ना? यही अर्थ निकलेगा ना, सीधा सीधा निकल रहा है अर्थ। हम नहीं लगा रहे हैं ऐसे, हमें कोई किसी से नाराजी थोड़ी है, सीधा सीधा यही अर्थ आ रहा है कि अगर आगम गुरु के बाद है तो गुरु आगम से पहले है, और गुरु अगर आगम से पहले है तो जो आगम चक्षु होते हैं गुरु, तो वो चक्षु से रहित है, क्योंकि चक्षु तो बाद में गुरु बना रहे हैं ना, तो नेत्र रहित गुरु हैं। तो अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अज्ञान रूपी अंधकार से जो अंधे लोग हैं उनकी आंखों को खोलने वाले गुरु होते हैं। अब गुरु ही स्वयं आंखों से रहित हो तो फिर वो कैसे खोल सकते हैं? अंधों की आंख कैसे खोल सकते हो? तो इससे ये बात निर्धारित होती है, अभी तक जितना कुछ उपलब्ध हो रहा है शास्त्रों में उसके माध्यम से ये बात निर्धारित हो रही है। निर्धारित करने का अधिकार हमारा नहीं है, लेकिन जितना आगम उपलब्ध हो रहा है उससे ये बात निर्धारित हो रही है कि पहले जिनेंद्र हैं, फिर आगम है, फिर गुरु है। जैनम जयतु शासनम।